चाहत को निशा के मरने के बाद सदमा सा लग गया था। वो पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। कभी वो अपनी मम्मा के जाने का दुख मना रही थी, तो कभी ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसे उनके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चाहत को इस हालत में देखकर आहान को बहुत बुरा लग रहा था। कहीं ना कहीं आहान चाहत के दर्द को समझ सकता था। अंदर ही अंदर किसी चीज को लेकर घुटते रहना क्या होता है, ये आहान से बेहतर कौन समझ सकता था। डॉक्टर के जाने के बाद आहान और चाहत रूम में अकेले थे। आहान ने चाहत को गले लगाया और सहलाते हुए कहा, डॉल, तुम्हारे दिल में जितना भी दर्द है वो आंसुओं के जरिए निकाल दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा दर्द तुम्हें जीने नहीं देगा। वो रोज तुम्हें इस बात का एहसास करवाएगा कि तुमने सही टाइम पर अपना दर्द बाहर नहीं निकाला। रोज रोज टुकड़ों में मरने से बेहतर है कि आप एक बार में मर जाओ। आहान चाहत को प्यार से समझा रहा था। तभी चाहत ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, जैसे मेरी मम्मा मर गई, यहाँ वो रोज दर्द सहती थी, रोज अपनी बीमारी से लड़ती थी, लेकिन आज एक ही बार में उनकी बीमारी ने उन्हें खत्म कर दिया। तो क्या मेरा दर्द मेरी जान नहीं ले सकता? आहान, उनके बिना मैं नहीं जीना चाहती। मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। मैं मेरी मम्मा को खुश देखना चाहती थी। हमेशा से यही चाहा था कि वो एक हेल्दी लाइफ बिताए। इसके लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आपने उस दिन सही कहा था, मैंने खुद को बेच दिया था। मैं अपनी मम्मा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपकी दी हुई सब तकलीफ सहूंगी, पर प्लीज मेरी मम्मा को मेरे पास वापस ले आओ। बोलते हुए चाहत आहान से अलग हो गई। वो किसी ऐसे इंसान की तरह बात कर रही थी जिसके सामने पूरा सच रखा था, फिर भी वो चाहकर भी उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। एक बार जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता है। तुम्हें सोने की जरूरत है। कुछ देर आराम से नींद लोगी तो शायद उठने के बाद तुम्हें बेहतर महसूस हो और तुम्हें सच को एक्सेप्ट कर पाओगी कि अब तुम्हारी मॉम इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती, आहान ने जवाब दिया। आहान ने चाहत को पानी पीने के लिए दिया। उसके अंदर नींद की गोलियां मिलाई हुई थी। डॉक्टर ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि चाहत का दिमाग कुछ देर के लिए शांत करना जरूरी था। चाहत के पानी पीने के बाद आहान ने उसका सिर अपने सीने से लगाया और उसके बालों को सहलाते हुए उसे सुलाने की कोशिश करने लगा। आहान भले ही रो नहीं रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। उसकी आंखों के सामने चाहत का मासूम चेहरा घूम रहा था। उसे बार बार उसकी वही बात याद आ रही थी जब चाहत अपनी मम्मा के इलाज के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। अचानक ही निशा की डेथ हो चुकी थी। निशा की डेथ में न केवल चाहत को बल्कि आहान को भी तोड़कर रख दिया था। कुछ ही देर में चाहत सो चुकी थी। आहान ने उसे बिस्तर पर लिटाया और फिर प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, वादा करता हूँ डॉल, तुम्हें इस दर्द से मैं निकालूंगा। ऐसे लगता है जैसे अचानक से मेरे ऊपर सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे अपनों की भी जिम्मेदारी आ गई है। वहाँ हॉस्पिटल में मॉम कोमा में है, तो आयुष को इस वक्त किसी अपने की सख्त जरूरत है। तुम मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनकर आई थी डॉल, लेकिन इस वक्त तुम भी वीक हो। तुमने अपनी मॉम को खोया है, मुझे तुम्हें नहीं, तुम सबको संभालना होगा। आहान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर वहां से बाहर आ गया। वो चाहत के पास रुकना चाहता था, लेकिन इस वक्त उसके सिर पर काफी सारी जिम्मेदारियां थीं। आहान ने चाहत को नर्स के सहारे छोड़ दिया था। वो बाहर आया तो पार्वती जी श्रद्धा के कंधे पर सर रखकर रो रही थी। श्रद्धा की आंखों में भी आंसू थे। उन दोनों को देखकर आहान ने अपनी नजरें फेर ली। आयुष आहान के पास आया और धीरे से बोला, दोनों ही बहनें अपनी मम्मा के जाने से बहुत दुखी हैं। इसने तो खुद को संभाल लिया है, लेकिन चाहत खुद को नहीं संभाल पा रही है। मैं उसके दर्द को समझ सकता हूँ भाई। वो बेचारी अकेली हो गई है और अकेले रहने का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। आहान की तरह आयुष भी अब चाहत के साथ रिलेट कर पा रहा था। आहान ने आयुष का कंधा सहलाते हुए कहा, वो उसकी बहन नहीं, फ्रेंड है, और तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वक्त बड़े से बड़ा घाव भर देता है, बस हमें जरूरत है तो सब्र रखने की। डॉल भी ठीक हो जाएगी और तुम भी। अपने बड़े भाई पर यकीन रखो, वो तुम दोनों को ही टूटने नहीं देगा, क्योंकि तुम दोनों ही मुझे खुद से ज्यादा प्यारे हो। आहान से बात करते हुए आहान इमोशनल होने लगा। ऐसा बहुत कम मौके पर होता था कि वो इमोशनल हुआ हो, अक्सर उसे गुस्सा ही आता था। आज उसने खुद अपनी इस नई फीलिंग को एक्सप्लोर किया था। खुद को कंट्रोल करने के लिए आहान ने आयुष को गले लगा लिया। कुछ देर गले लगे रहने के बाद आहान आयुष से अलग हुआ और फिर डॉक्टर के पास बाकी की फॉर्मेलिटी करने चला गया। चाहत ने अनजाने में ही सही, लेकिन निशा के डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर दिया था। आहान डॉक्टर के पास जा रहा था, तभी उसके पास किसी का कॉल आया और वो अंदर जाने के बजाय बाहर चला गया। वहीं डॉक्टर भी इस वक्त अपने केबिन में अकेला था और किसी से कॉल पर बात कर रहा था। वो इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था। उसने दबी आवाज में कहा, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे कहा था कि तुम उससे सिर्फ मिलने वाले हो और तुमने उसे मार दिया। डू यू हैव एनी आइडिया मुझे कितनी मुश्किल हो रही है यहाँ इस केस को संभालने में? मैंने उन्हें अभी कहा है कि उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था, इस वजह से उसकी जान चली गई। ये तो शुक्र मनाओ उसकी बेटी सदमे में है, जो ठीक से अपनी मम्मा की लाश भी नहीं देख पा रही। मुझे तुमसे इसकी उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है।
अगर उम्मीद नहीं थी तो उम्मीद कर लेनी चाहिए थी। वैसे भी वो औरत मरने वाली थी। तुमने उनसे झूठ बोला था कि वो कैंसर के स्टार्टिंग स्टेज में है। वो लास्ट स्टेज में आ चुकी थी। उसके इलाज में कितने भी पैसे खर्च कर देते, लेकिन वो 2 महीने से ज्यादा नहीं निकालती। तुम इलाज के बहाने उनसे करोड़ों वसूलना चाहते थे। मैंने तुम्हारा प्लान फ्लॉप कर दिया। लगता है इसी वजह से तुम्हें गुस्सा आ रहा है। कॉल की दूसरी तरफ से एक आदमी की भारी आवाज आई। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो अपनी असली आवाज छुपाने के लिए किसी तरह का ऐप या ऑडियो डिवाइस यूज कर रहा था। उस आदमी की बात सुनकर डॉक्टर बुरी तरह भड़क गया। वो चिल्लाते हुए बोला, मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुम ही करने वाले हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा। हाँ, फिर उस कंप्लेन में साथ में ये भी लिख देना कि उस औरत से मिलने की इजाजत तुमने ही मुझे दी थी। इस बात को भी याद रखना कि कंप्लेन के साथ में तुम्हें उस औरत की असली रिपोर्ट भी लगानी पड़ेगी। सामने मौजूद आदमी उसे सीधे सीधे धमकी दे रहा था। जब डॉक्टर का उस पर बस नहीं चला तो उसने गुस्से में कॉल कट करके साइड में रख दिया। डॉक्टर खुद से धीरे से बड़बड़ाकर बोला, मैं भी कहां इसकी बातों में आ गया। पता नहीं क्यों भूल जाता हूं कि ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। कॉलेज टाइम से ही इसकी यही फितरत रही है। मुझे समझ नहीं आता उस मामूली सी औरत को मारने के पीछे इसका क्या कारण हो सकता है। वो औरत और उसकी बेटी काफी गरीब थी। उनका तो इलाज तक अहानोबेरॉय फरवा रहा था, फिर इससे उसे मारकर क्या मिला होगा। डॉक्टर अपने ख्यालों में खोया हुआ सोच रहा था, तभी वहां आहान आया। उसे देखते ही डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर वो तुरंत ही खुद को सामान्य करके बोला, मिस शर्मा आप कैसी हैं मिस्टर ओबेरॉय? वो तो ठीक हैं, लेकिन आप परेशान लग रहे हैं, आहान में डॉक्टर के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए पूछा।
डॉक्टर आहान के सवाल से हड़बड़ा गया था। उसने नामे सिर हिलाते हुए कहा, कुछ खास नहीं हुआ है, बस मिसेस शर्मा की सडन डेथ से थोड़ा परेशान हो गया था। हमारे लिए भी किसी पेशेंट की इस तरह अचानक जान जाना बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हर रोज यहाँ लोगों को बीमारी से लड़ते देखते हैं, कोई ठीक हो जाता है तो कोई बीच में ही हार मान लेता है। मुझे तो उस बेचारी बच्ची के लिए बुरा लग रहा है, अपनी मम्मा के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है वो। बात को टालने के लिए डॉक्टर जानबूझकर चाहत की बात करने लगा। आहान ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, मुझे मिसेस शर्मा की डेड बॉडी लेकर जानी है, उनका अंतिम संस्कार भी करना है। मैं चाहता हूँ कि उनकी अंतिम क्रिया पूरे विधि विधान से पूरी की जाए। चाहत ने डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर दिया है, बाकी की फॉर्मैलिटी मैं पहले ही पूरी कर चुका हूँ, बस आप हमारे लिए एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करवा दीजिए। हालांकि निशा की मौत को लेकर कोई सवाल खड़ा नहीं हो रहा था और ना ही किसी को कोई डाउट था, फिर भी डॉक्टर हड़बड़ा गया। वो अपनी तरफ से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने कहा, आजकल इस ज़माने में ये सब कौन करता है? अक्सर लोग फ्यूनरल के लिए हॉस्पिटल की फर्नेस यूज़ करते हैं। आप कहो तो मैं मिसेज़ निशा शर्मा का अंतिम संस्कार भी वहीं पर करवा देता हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर आहान सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। आपको जितना कहा है उतना कीजिए, बाकी मुझे फ्री की एडवाइस देने वाले लोग पसंद नहीं हैं। अपनी बात कहकर आहान वहां से बाहर चला गया। आहान के बाहर जाते ही डॉक्टर ने अपना रुमाल निकाला और पसीना पूछने लगा। उसने अपने मन ही मन कहा, उससे ज्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में अभी फंस जाता, मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ। ये क्यों उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे, वैसे भी उसकी नेचुरल डेथ हुई है। मुझे उस औरत के अंतिम संस्कार में जाकर सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखना होगा, मैं रिस्क नहीं ले सकता। डॉक्टर तुरंत बाहर आ गया। आहान को निशा की डेड बॉडी मिल गई थी। वो उसे लेकर अपने घर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने निशा की डेथ बॉडी सीधे रवि के घर ले जाने का सोचा। उसने इस बारे में उनसे पहले ही कॉल पर बात कर ली थी, उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी। निशा के जाने से वो भी काफी दुखी हुए थे। आहान चाहत को अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने आयुष को उनके साथ भेजा और खुद चाहत के साथ मौजूद था। चाहत अभी तक गहरी नींद में थी, जबकि आहान उसके पास बैठा उसका ध्यान रख रहा था। आहान चाहत को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन तभी उसके पास उसकी मॉम के हॉस्पिटल से कॉल आया। सर, मिसेज ओबेरॉय को होश आ गया है, सामने से उसके हेडगार्ड की आवाज़ आई। शिवानी को होश आ चुका था, ऐसे में आहान एक मिनट भी उससे मिले बिना नहीं रह सकता था। उसकी माँ से वो बहुत प्यार करता था, ऊपर से निशा की मौत के बाद वो शिवानी को बहुत मिस भी करता था। आहान चाहत को अकेले नहीं छोड़ सकता था, वो कन्फ्यूजन में वहां खड़ा सोच रहा था। तभी उसने नर्स से पूछा, ये कब तक उठेगी? इन्हें सुबह तक होश आएगा, मैं इनके पास हूँ, आप चाहें तो अपना काम करने जा सकते हैं, नर्स ने जवाब दिया। आहान के लिए चाहत इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। चाहत को नर्स के सहारे छोड़कर आहान वहां से शिवानी से मिलने चला गया। आहान के बाहर निकलते ही एक शख्स बाहर निकल कर आया, उसने अपने चेहरे को मास्क से ढक रखा था। आहान को बाहर निकलने देख उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसके कदम चाहत के रूम की तरफ बढ़ रहे थे। निशा को मारने के बाद अब वो चाहत को मारने का मौका ढूंढ रहा था, जो अब उसे मिल गया था।